उसके वापस जाने के बाद मजीद अमजद और शार्लेट में खतों की ताबत जारी रही और उनके बहुत सारे खतूत भी थे, लेकिन वो सब खत गायब हो गए तो हमें ठीक से मालूम नहीं हो पाया कि एग्जैक्टली क्या वो एक दूसरे को खत लिखते थे। मगर इसके बारे में मैंने एक मजमून लिखा जिसमें मैंने सबसे पहली बात तो ये थी कि मजीद अमजद ने उसका नाम शार्लेट अपनी शायरी में लिखा, जो कि अरबिक स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है शार्लेट का। तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी एक जर्मन दोस्त से पूछा कि ये शार्लेट ये कोई जर्मन नाम है, तो उसने कहा ओ यू मीन शार्लेटे, तो जिसको कि स्पेल अंग्रेजी में प्रोनाउंस करते हैं शार्लेट। तो खैर उसका नाम शार्लेट था, लेकिन मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि वो कहाँ रहती थी वहाँ, क्या उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसकी कोई तस्वीरें होंगी। लेकिन ख्वाजा क्या नाम है,
ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब,
जी ख्वाजा जकरिया साहब, गालिबन उनके बेटे से भी मैंने, बल्कि उन्होंने खुद ही फवाद में मुझे एक ईमेल किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपका मजमून मैंने पढ़ा और एक खत है उनका, बस बाकी सब खत पता नहीं कहाँ चले गए, उसका नाम शार्लेट था, ये आपने सही कहा। मगर समहाउ यू नो मुझे लगता है कि अगर कोई वाकई जर्मनी जाए और वहाँ पर पूछताछ करे बर्लिन में म्यूनिख में, शायद कुछ मालूम हो उसके बारे में।
इस हवाले से कौन कौन सी नज़में आप यहाँ पर बताना चाहेंगी जो लिखी गई इस वाक़े के हवाले से?
एक तो नज़्म है जिसमें कि जब वो शार्लेट को पहुँचाने के बाद वापस आ रहे हैं, वो उन्होंने वो नज़्म ट्रेन में लिखी है,
क्वेटा तक।
टाइटल नहीं याद आ रहा। हाँ क्वेटा तक,
जी जी बिल्कुल।
और एक नज़्म है जिसका नाम है एक फोटोग्राफ,
जी,
जिसमें शार्लेट ने शायद उनको तस्वीर अपनी भेजी थी, उसमें शार्लेट जो है वो एक नाव में बैठी है और पैर लटकाए हुए पानी में, और उस तालाब में तमाम कमल के फूल खिले हुए हैं। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नज्म है शार्लेट के बारे में, बहुत ही खूबसूरत नज्म है। फिर उन्होंने एक और नज्म लिखी है जिसमें वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, शायद वो उसके साथ कभी ऐसा नज्म पढ़ के लगता है कि ये कोई वाकई एक इंसिडेंट है जिसको उन्होंने बयान किया है।
जी उस नज्म का उनवान ही है रेलवे स्टेशन पर।
जी उस नज्म का उनवान है रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से 5-7 नज्में हैं।
म्यूनिख उनकी एक नज्म है जो कि जिसमें शालात का जिक्र भी आता है,
इसमें एक्चुअली उसका नाम है शालात।
बल्कि मेरा कुछ अंदाजा ये है, आप उसे ज्यादा दुरुस्त बता सकती हैं कि निगाह बाजगश्त जो उनकी नज्म है वो भी गालिबन इसी हवाले से लिखी गई है।
जी 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 बिल्कुल, निगाह बाजगश्त इसी हवाले से लिखी गई है। तो गालिबन वो लिटरेरी टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते थे आपस में, और शार्लेट से मिलने के बाद मजीद अमजद की जो शायरी की जो टोन है वो बदल जाती है, उसमें एक तरह का एक दूसरी किस्म की का एक लाइटनेस है। ऐसा लगता है कि जो उनकी जो जस्तजू थी, जिस चीज की तलाश थी, उनको अपने जो 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 मरकज वो ढूंढ रहे थे अपनी जिंदगी में, वो उन्हें मिल गया है। तो ये एक बहुत ही अहम चेंज हमें नजर आता है उनकी शायरी में पोस्ट शार्लेट, और एक सर्टन मैच्योरिटी, उनकी इमोशनल मैच्योरिटी भी नजर आती है हमें।
दुनिया के तमाम शायर, तमाम लिखने वाले ख्वाब देखते हैं, आरजू करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में भी ये आरजू जागती है कि काश मैं स्टेडियम होटल की उस महफिल में शरीक हो सकता कि जिसमें मजीद अमजद अपने चंद मखसूस दोस्तों के साथ बैठा करते थे। काश मैं उनके सामने सजी हुई टेबल की सतह पर खाक की हल्की सी तह होता और किसी हवा के झोंके के इंतजार में रहता कि कब वो आए और मुझे मजीद अमजद के शायराना वजूद से मिला दे, उनके मलबूस से मिला दे, और फिर मैं महफिल के इख्तिताम पर उनके साथ साथ साइकिल पर धीरे धीरे साहिवाल के उन रस्तों से होकर गुजरूं, उस नदी और उन चिड़ियों को देखूं कि जिस पर उन्होंने नज़में लिखी थीं, उन बाकी मांदा दरख्तों तक पहुंचूं कि जिन दरख्तों ने तौसीए शहर में अपने साथियों के कटे हुए जिस्मों का मातम किया था। ये तो एक नज्म लिखने वाले नौआमोज शायर की बचकाना आरजू है, लेकिन एक लिहाज से ये सच भी है कि हम सब मुश्त खाक हैं, और खाक ही वो मुकम्मल इस्तारा है कि जिसमें हम सब का मिलाप है। मैं समझता हूँ कि मजीद अमजद जमीन से उठने वाली वो खाक है जो आलमी आसमान अदब पर सितारों और कहकशाओं से भी ज्यादा खूबसूरत ज्यादा रोशन है, इसलिए कि उसने इंसानी जिस्म और इंसानी रूह के दुखों को और इंसानी जात के खैर पर मुकम्मल इजहार को मुकम्मल यकीन को एक देरपा जगमगाहट की सूरत में अपने अंदर रोशन किया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि एक हैप्पी नोट के साथ मजीद अमजद के बारे में गुफ्तगू को ख़त्म किया जाए, एक ऐसी सूरत हाल में कि जिसमें हमारे सुनने वाले उसका एक मस्बत पहलू अपने जहन में रखें, क्योंकि वैसे तो वो रंजो अलम की इस लिहाज से बहुत भरपूर तस्वीर थी कि हमारे मुआशरे ने नाकदरी की, बे इंतहा नाकदरी की अगर आप देखिए, और वो बहुत दुख की बात भी है। लेकिन मेरा ये यकीन है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मजीद अमजद को अपना अदबी मकाम जरूर मिलेगा।
मुझे लगता है कि ये 2014 जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, बहुत सारी किताबें मजीद अमजद पर मंजरे आम पर आई हैं और दोबारा उनकी शायरी पर लोगों ने मजामीन लिखे हैं और ये गुफ्तगू फिर से एक तरह से जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, एक ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन,
जी
तो ये शुरू हुआ है खास करके अप्रैल 2014 में उनके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स हुए, बहुत सारे लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो यकीनन हमारे माशरे ने मजीद अमजद को भुलाया नहीं है।
जिन लफ्जों ने हमारे दिलों की बयतें हैं, क्या वो लफ्ज हमारे कुछ भी न करने का कफारा बन सकते हैं? क्या कुछ चीखते मरने वाली सतरें सहारा बन सकती हैं उनका, जिनकी आंखों में इस मेरे देश की
जिन लफ्जों में हमारे दिलों की बैतें हैं, क्या सिर्फ वो लफ्ज हमारे कुछ भी ना करने का कफारा बन सकते हैं? क्या कुछ चीखते मानों वाली सतरें सहारा बन सकती हैं उनका, जिनकी आंखों में इस देश की हद इन वीरां सहनों तक है? कैसे ये शेर और क्या इनकी हकीकत? ना साहब, इस अपने लफ्जों भरे कनस्तर से चिल्लू भर भीख किसी को देकर हमसे अपने कर्ज नहीं उतरेंगे। तो अब ये सब हर्फ जबूरों में जो मुजल्लद हैं, क्या हासिल इनका? जब तक मेरा ये दुख खुद मेरे लहू की धड़कती टकसालों में ढल के दुआओं भरी इस एक मैली झोली में न खनके जो रस्ते के किनारे मेरे कदमों पे बिछी है।
मकबूलियत उन्हें मिलनी चाहिए थी वो अब उन्हें हासिल हो रही है, तो ये बहुत ही मुझे कहना चाहिए ये हैप्पी नोट है।
जी बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात है ये। मैं एक दफा आपका बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और बहुत काम की बातें आपने हमें बताई।
मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मजीद अमजद के बारे में मैं सोचूं, और मैं कुछ आपसे आपके सवाल बहुत दिलचस्प थे और मुझे बहुत खुशी है इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने की।
बहुत शुक्रिया।